Krishna, Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निकाय गौर निकाय गौर निकाय जय गौर निकाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिभाजकाचार्य श्रोतर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की मिथाई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे तो आज हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद से 14वें अध्याय से 27 और 28वां श्लोक पढ़ रहे हैं। आदर्श पारिवारिक जीवन ये इस अध्याय का नाम है। अथ देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आवहा सवै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरम् यत्र ब्राह्मणकूलम् तपो विद्यादयान्वितम् अतद्देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आवहान् स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरम् यत्र ब्राह्मणकुलम् तपोविद्यादयान्वितम् हरे कृष्ण। Mataji's. Dharmadi Shreya Avahan. Savai Punya Tamo Deshaha. Satpatram Yatra Labhyate. Vimbam Bhagavato Yatra. Sarvame Chacharacharam. Yatraha Brahmana Kulam. Tapo Vidyadayanvitam. Atha. Deshan Pravakshami. Dharmadi Shreya Avahan. अथ तत्पश्चात देशान स्थानों का प्रवक्ष्यामि वर्णन करूंगा धर्म आदि धार्मिक कृत्यादि श्रेय कल्याण आवा आवहान जो ला सकता है सह वै निस्संदेह पुण्यतम सर्वाधिक पवित्र देशः स्थान सत्पात्रम वैष्णव यत्र जहां लभ्यते उपलब्ध होते हैं बिंबम अर्च विग्रह मंदिर में भगवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो आश्रय है यत्र जहां सर्वम एतत इस समग्र विराट जगत का चर अचरम सभी चर तथा अचर प्राणियों सहित यत्र जहां हा निस्संदेह ब्राह्मण कुलम ब्राह्मणों की संगति तपह तपस्या विद्या शिक्षा दया कृपा अन्वितम से युक्त। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां धार्मिक अनुष्ठान उत्तम प्रकार से संपन्न किए जा सकते हैं। जिस किसी स्थान में वैष्णव उपस्थित हो वो स्थान समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त चर और अचर प्राणियों सहित इस समग्र विराट जगत के आश्रय हैं और वो मंदिर जहां श्री भगवान का अर्चा विग्रह स्थापन किया जाता है वो सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है। यही नहीं, जिन जिन स्थानों में विद्वान ब्राह्मण तपस्या विद्या तथा दया के द्वारा वैदिक नियमों का पालन करते हैं वे भी अत्यंत शुभ और पवित्र स्थान होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में सूचित किया जाता है कि जिस मंदिर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और जहां वैष्णव जन श्री भगवान की सेवा में लीन रहते हैं वो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने का सर्वोत्तम पवित्र स्थल है। आज के समय में विशेष रूप से बड़े बड़े नगरों में व्यक्ति छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और अर्चा विग्रह या मंदिर स्थापन करने में समर्थ नहीं होते। अतएव ऐसी परिस्थितियों में व्यापक हो रहे इस श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा स्थापित किए गए जो केंद्र हैं और मंदिर हैं वो धार्मिक उत्सवों को संपन्न करने हेतु सर्वाधिक पवित्र स्थान है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति धार्मिक उत्सवों या अर्च विग्रह पूजा में रुचि नहीं रखते फिर भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक जीवन में अग्रेसर होने का अवसर प्रदान करता है। जय हो, चलो प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संक्षेप में आपको इस श्लोक की बैकग्राउंड यानी पार्श्वभूमि बताते हैं। ये सातवां स्कंद चल रहा है, इसमें प्रहलाद जी का चरित्र है, हिरण्यकशिपु को मारने का वध करने की भी कथा है, नरसिंह भगवान अवतार, प्रहलाद की प्रार्थना, ये सब कुछ इस अध्याय में है। बहुत सुंदर ये अध्याय है। और सातवां स्कंद यानी पूरा गृहस्थ जीवन पर विस्तार रूप में इसमें उपदेश दिए गए हैं। और अभी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से संवाद कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने इस अध्याय के पहले कुछ सुंदर प्रश्न किए हैं, वो बहुत ही समर्पक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सातवां स्कंद जो है बहुत ही ज्ञान देने वाला, साक्षात्कार दिलाने वाला, भक्ति में प्रगति कराने वाला है, क्योंकि ये सातवें स्कंद की कथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सैकड़ों बार सुनी है, सैकड़ों बार। और कैसे सुनी है? डांस करते हुए, नृत्य करते हुए गदाधर पंडित के मुख से उन्होंने सातवें स्कंद की कथा कई बार सुनी है, जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ के स्थान पर। और ये अध्याय जब मैं पढ़ रहा था तो जो चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं वो सबके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है कि हमको क्या करना है। नारद मुनि ने इतना विस्तार में, डिटेल में सब कुछ चीजें बताई है। तो इस श्लोक के पहले जो उन्होंने बताया है वो बताया है ये है कि कैसे हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति मनुष्य जन्म लेके आया है तो उस पर बहुत ऋण होते हैं, बहुत प्रकार के, माता पिता के ऋण होते हैं, गुरु जी के ऋण होते हैं, ऋषि मुनियों के ऋण होते हैं, देवताओं के ऋण होते हैं, पृथ्वी माता का ऋण होता है, ऐसे कई प्रकार के ऋण जन्म के साथ ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो एक भागवत में श्लोक है, हाँ कृपया प्रवचन सुनते समय जप न करें, प्रवचन सुने। तो एक भागवत में श्लोक ऐसा है जिसमें दिया है कि जो व्यक्ति भक्त बन जाता है उसे ना देवताओं का ऋण चुकाना पड़ता है, ना माता पिता का, ना ऋषि मुनि का, ना गुरु का, ना स्थान का, ना पृथ्वी का, ऐसा लिखा गया है। और उस श्लोक का आश्रय लेकर सब भक्तगण कहते हैं कि नाउ वी आर हरे कृष्णा डिवोटीज, अभी हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, हमारी दीक्षा हो चुकी है, हमें कोई अन्य क्रिया और ऋण चुकाने का कोई आवश्यकता नहीं है। खास करके गुजरे हुए माता पिता या कोई वरिष्ठों का श्राद्ध बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस हरे कृष्ण नाम जप करो। लेकिन वो जो श्लोक है जिसमें लिखा गया है कि देवर्षि ऋणाम, जो बहुत याद नहीं उस श्लोक को, लेकिन उसमें दिया गया है कि कितने ऋण को हमको चुकाना होता है और शुद्ध भक्त को उसको ऋण चुकाना नहीं पड़ता है। तो उसमें एक ही पॉइंट हमको समझना है कि वो श्लोक किसको लागू है, वो छोड़कर हम सब कुछ सोचते हैं। वो श्लोक उस व्यक्ति को लागू है जो शत प्रतिशत कृष्ण भगवान और गुरु महाराज के शरण में है। उसका जीवन जो है अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि सुप्रसिद्धति इस लेवल पर है, वो शत प्रतिशत भगवान को शरणागत है। तो जब तक हम श्री कृष्ण भगवान को और गुरु महाराज को शत प्रतिशत शरणागत नहीं होते हैं, तब तक वो श्लोक हमें लागू नहीं होता है। और तब तक जितने भी हमारे ऋण है वो सबको चुकाना बहुत आवश्यक है। तो उसमें से इन कुछ श्लोकों में, जैसे अभी 27वां श्लोक चल रहा है, तो इस आपको पहले से पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से ऋणों का वर्णन किया है। ब्राह्मणों का ऋण है, माता पिता का ऋण है, देवताओं का ऋण है। देवताओं का ऋण क्यों है? क्योंकि वर्षा देते हैं, भूमि अनाज देती है, वायु प्राणवायु देता है, वरुण देव जलाशय देता है। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बिना मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता है। माता पिता, मैंने एक बार गांव गया था, मैं मेरे किसी के श्राद्ध में गया था, तो एक बड़े ही बुजुर्ग और बहुत सुंदर व्यक्ति थे हमारे गांव में। उनको मैंने पूछा कि ये माता पिता का श्राद्ध कब तक करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जन्म जन्मांतर भी आप ये श्राद्ध करते रहेंगे तो एक जन्म के माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते आप। तो आप तो मेरे घर आप 80 साल के हो। लगा जब तक सांस में सांस है तब तक मुझे मेरी माता पिता का श्राद्ध करना है, चाहे वो गुजर के अभी 40 साल हो चुके हैं फिर भी करना है। क्योंकि जो कष्ट माँ ने उठाया है हमको 9 महीने पेट में रख के, और जो कष्ट पिता ने उठाया है हमको संभालने के लिए और हमारा क्या कहते हैं लालन पालन करने के लिए, वो ऋण जो है, वो जो कार्य उन्होंने हमारे लिए किया है, वो किसी भी कि कोई भी चीज उनके लिए करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हमने माता पिता का ऋण चुका दिया। वी कैन नेवर क्लेम, हम लोग कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि मैंने इतनी सेवा की है कि मेरे पास माता पिता का कोई ऋण नहीं बचा है। और माता पिता के ऋण के परे एक ऋण था है, वो है गुरु महाराज का ऋण। क्योंकि गुरु महाराज जो है वो केवल इस जन्म से संबंधित नहीं है, गुरु महाराज का तो हमारा जन्म जन्मांतर तक जन्मे जन्मे प्रभु से ही। ये जन्म के लिए नहीं है, ये जन्म शायद शुरुआत हो गई होगी, ये जन्म शायद पिछले जन्म का कनेक्शन वापस रिन्यू किया होगा हमने, लेकिन वो तो जन्म जन्मांतर का है। जब तक हम रहेंगे, जब तक समय रहेगा, जब तक गोलोक वृंदावन है, जब तक ये है पृथ्वी है भौतिक जगत है, मतलब अनादि काल तक अनंत काल तक ये रिश्ता जो है वो बना रहेगा। तो कभी भी हम ये सोच नहीं सकते कि हम गुरु का ऋण भी चुका सकते। तो इस इन श्लोकों में नारद मुनि विशेषता गृहस्थ जीवन के लोगों की बात कर रहे हैं, और विशेषता माता पिता के और बुजुर्गों के पुरखों के श्राद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बताएं आपको, पूरा भविष्य शास्त्र दिखा है इसके अंदर, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है पूरा, कौन से तिथि में कौन से नक्षत्र में किस समय पर क्या करना है, क्या तर्पण देना है, अमावस्या को क्या करना है, और वो कार्तिक महीने की अष्टमी को क्या करना है, और मार्गशीर्ष महीने में क्या करना है, और इसके अक्षय तृतीया में क्या करना है, थोड़ा डिटेल में स्टडी करके नोट्स बनाना पड़ेगा। इतना विस्तार में इसका वर्णन दिया है कि अगर आप अक्षय तृतीया चूक जाते हो तो आपके बोला अगली तिथि भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में क्या करना है, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं, उसके बारे में विस्तार वर्णन दिया है। इतना सुंदर हमारा भागवत शास्त्र जो है ना, वो परम शास्त्र है, परम परम हम संहिता परम शास्त्र अमलम पुराणम, इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है परम संहिता। लेकिन एक नौ नए नए सिखे भक्त को भी, नौ सिखिया भक्त के लिए भी सब कुछ इसमें है, परमहंसों के लिए भी है। परमहंस पढ़ने बैठेंगे तो अपना निचोड़ निकालेंगे, नौ सखिया भक्त पढ़ने लगेगा तो उसके लिए जो आवश्यक है वो उसमें निकालेगा, सबके लिए सब कुछ है इसके अंदर, ऐसा परमोत्तम शास्त्र है ये। तो मैं आपको जरूर विनती करूंगा कि इसमें जो तिथि पूर्वक जो विधि विधान पूर्वक जो लिखा है ना, उसको जरूर हमको पढ़ना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि मूलभूत कर्तव्यों को किए बिना हम कभी भी उच्च कर्तव्यों को करने का दावा नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ऑलरेडी 12th के आगे ही पढ़ाई करूंगा, 12th तक पढ़ने की जरूरत क्या है, लेकिन आपको पहली भी में जाना पड़ेगा, चौथी में भी जाना पड़ेगा, आठवीं भी जाना पड़ेगा, दसवीं भी जाना पड़ेगा, सब कुछ करके ही आपको आगे फिर एमबीबीएस की एडमिशन मिल सकती है। तो कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान जन में होगा, कितना भी उसका आईक्यू 130 होगा, फिर भी उसको ये सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही उसको एडमिशन मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, फिर उसको एडमिशन मिलेगा। तो सारे विधि विधानों का, श्राद्धों का, तर्पणों का वर्णन करने के पश्चात की क्या करना चाहिए, इस श्लोक में 27 और 28 में नारद मुनि जी बता रहे हैं वो कहां करना चाहिए। पहले बताया क्या करना चाहिए, कौन से चीजें करनी चाहिए, और अब बता रहे हैं कि कौन सा स्थान उसके लिए उचित है। देखो इसमें नारद मुनि जी बहुत सुंदर बता रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने जो बताया है, हमारा जो भागवत शास्त्र है वो स्थूल से भी स्थूल उसमें वर्णन किए गए हैं, डिटेल्स एकदम, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु जो है भावना की वो भी वर्णित की गई है। जैसे अभी देखो, अभी उन्होंने ऐसा बताया नहीं कि वृंदावन धाम या नवद्वीप धाम, पहले क्या बताया उन्होंने, जिस किसी स्थान में वैष्णव उपस्थित हो वो समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात बताई हमको, इसका मतलब वो स्थान गटर के बाजू में भी हो, स्मशान के बाजू में भी हो, या और किसी तथा कथित अपवित्र घटना या होने वाली बाजू में हो, लेकिन अगर उसमें कोई शुद्ध भक्त आ जाता है, वैष्णव आ जाता है, तो वो स्थान परमोत्तम स्थान बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो परम वैष्णव होते हैं उनके चरणों में सारे तीर्थ होते हैं। वो एक प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें लिखा है कि जहां जहां चलते हैं और जहां जहां कदम रखते हैं वहां सारे तीर्थ उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। वो एक चलता बोलता तीर्थ है, वो एक तीर्थ नहीं अनंत तीर्थों का एक समागम है, और जहां जहां वो शुद्ध भक्त चलता है, अपने कदम रखता है चरण कमल, वहां वहां कम से कम उस समय के लिए क्यों न हो सारे तीर्थ स्थान, सारी नदियां, सारे ऋषिगण सब उपस्थित हो जाते हैं, सारे शास्त्र उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके हृदय में विराजमान थे। तुम्हारा हृदय गोविंद विश्राम, तो जिनके हृदय में श्री कृष्ण पूर्णतः उनके लिए साक्षात्कारी जागृत अवस्था में रह रहे हैं, तो साक्षात वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, नवद्वीप सारे धाम चल रहे हैं उनके साथ, बाकी छोटे मोटे तीर्थ स्थान धाम सारे चल रहे हैं उनके साथ, क्योंकि श्री कृष्ण को उन्होंने हृदय में अपने प्रस्थापित कर लिया है, न इष्ट बना लिया है। ऐसा भी कहा है कि जिस दिन आपको शुद्ध भक्त का दर्शन होता है, कोई आपको कार्य नहीं करना है, बता रहा हूं, उस दिन आपकी उस दिन की साधना और उस दिन तक की हुई साधना सफल हो जाती, सार्थक हो जाती। शुद्ध भक्त का दर्शन अगर दो शब्द भक्त भी मिलते हैं समझो, तो दोनों के लिए सार्थक हो जाता है साधना उस दिन की, क्योंकि दोनों समझते हैं कि मैंने आज शुद्ध भक्त का दर्शन किया है, वो भी समझते हैं मैंने भी किया है। इसलिए वैष्णव जो श्री कृष्ण भक्ति में लीन है, ऐसे व्यक्ति का हमारा संपर्क होना बहुत जरूरी है। हो सकता है रोज नहीं मिलेंगे उनको, लेकिन हमारा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और कनेक्शन के बाद में सेवा का संबंध होना भी जरूरी है, और सेवा के संबंध बाद में अगर हो सकता है तो प्रेम भी होना जरूरी है, उनका हमारे ऊपर, हमारा उनके ऊपर। अगर ये चीज हमारे जीवन में है तो वो एक वैक्सीन की तरह है, टीका। टीका क्या करता है, आपको होने वाले या संभव जिसका है, संभवता जिसकी है, उस रोग से आपको टीका बचाता है। वो टीका पहन के आप, टीका लेके आप दुनिया में कहीं भी घूमेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है आपको। उसी तरह से वैष्णव के साथ में सेवा का और प्रेम का संबंध होना ये सर्वोच्च टीकाकरण है भव रोग के खिलाफ। अगर ये टीकाकरण आपने कर दिया है तो आपको कोई भव रोग की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भव रोग में है हम लोग, जन्म मृत्यु में अभी फंसे हुए हैं, मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन उसका परिणाम जो है, जो लोगों को दुख के रूप में होता है, वो नहीं होगा। दूसरा स्थान बताया है जो आज के प्रसंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का प्रसंग क्या है, आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। जय हो, जय हो, समझ बताया गया फॉर्मेशन ऑफ इस्कॉन। और फॉर्मेशन ऑफ इस्कॉन का मतलब क्या होता है, कि आज ये संगत ये जो संगठना है हमारी, ये जो हमारा आंदोलन है या हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठना है, इसको आज बनाया गया, उसको उसका रूप मूर्त स्वरूप दिया गया उसको। और कहां दिया गया उसको? न्यूयॉर्क में। उधर एक सुंदर एक जगह है, 26 सेकेंड एवेन्यू, पता नहीं आप में से कितने लोग गए होंगे, मेरा सौभाग्य रहा मैं वहां गया हूं, जहां पर प्रभुपाद जी ने अपना यह आंदोलन शुरू किया। हाँ, अकेले 70 वर्ष की वृद्ध अवस्था में, बिना किसी सपोर्ट के, ठंड में एक साल तक पूरा वो घूमते रहे ऐसे ही भिक्षा करते हुए, और उसमें गीता का कोर्सेस शुरू किए। एक दिन उनको लगा कि कुछ होना चाहिए अपना फॉर्मेशन। उसके पहले वो एक बार उधर एक ना बहुत सुंदर पार्क है, टॉमकिन स्क्वायर पार्क, वो अमेरिका इंग्लैंड ये देश बहुत पार्क के लिए बहुत फेमस है। ऐसे सैकड़ों हेक्टरों में पार्क भरे हुए रहते हैं, बड़े बड़े तालाब रहते हैं उसके अंदर, बड़े रस्ते रहते हैं, हरियाली रहती है, अलग अलग सेक्शन रहते हैं। तो टॉमकिन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी, उनके पास तब मृदंग भी नहीं था, तो उधर एक पेड़ है जिसका नाम आज रखा गया है हरे कृष्णा ट्री। क्या लिखा है? जय हो, हरे कृष्णा ट्री। और वो हरे कृष्णा ट्री का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस पेड़ के नीचे बैठकर प्रभुपाद जी ने प्रथम कई बार कीर्तन किया था। शुरुआत जो है यानी कि गाना और बजाना, भगवान के नाम का गायन और कोई वाद्य बजाना, इसके साथ जो करते हैं उसको कीर्तन कहते हैं। वो कीर्तन नाम की कृति जो है उन्होंने वहां पर पहले शुरू की थी। पहले तो पहुंच गए थे बहुत दिन पहले, लेकिन वहां पर बैठ के उन्होंने सोचा कि कीर्तन करें। और कीर्तन कैसे गया था? अभी देखो, हम लोग सोच रहे थे कि मृदंग कौन बजाएगा, कौन बजाएगा, इतना बढ़िया मृदंग है, उसको जमीन पर मत रखो, कुछ आसन पे रखो, बलराम जी स्वयं है वो, तो हमारे पास सब कुछ है लेकिन बजाने वाला नहीं है। बहुत देर तक देखते रहे कौन बजाएगा, कौन बजाएगा। प्रभुपाद जी इतने बजाने के लिए उत्सुक थे, उनका मृदंग नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक डब्बा लिया, डब्बा जिसमें हम लोग धान रखते हैं, धान ढक्कन होता है लंबा, एल्युमिनियम का होता है, स्टील का होता है, ऐसा एक डब्बा लिया उन्होंने, और डब्बा बंद करके वो गार्डन में लेके गए और उसको उन्होंने बजाया। आंख बंद करके जब शुरू किया बजाना तो उधर कोई नहीं था, मतलब लोग थे इधर उधर, कोई ड्रग ले रहा है, कोई इधर कुछ व्यभिचार कर रहा है, कोई उधर कुछ सो रहा है, कोई उधर नशे में चूर होके गिरा हुआ है, ऐसे बहुत भयंकर अवस्था है। आज ही मैं गया हूं उधर, आपको डर लगेगा उसके अंदर जाने के लिए, क्या क्या हो रहा है उधर वो गार्डन के अंदर। उसके बीच में बैठ कर ये आंख बंद करके शुरू किया, कोई नहीं था वहां पर, और आंख बंद करके आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, ऐसे नसें तनी हुई है उसके सर के ऊपर, सर इधर नसें तनी हुई है, ऐसे प्रभुपाद जी इतना उत्कट कीर्तन कर रहे हैं। और जब 45 मिनट के बाद आंख खोलते हैं, देखते कि बड़ा समुदाय जमा हो गया है, विदेशी अमेरिकन युवा युवतियों का समुदाय, कुछ बुजुर्ग भी है, कुछ जवान है, कुछ ऐसे हैं, लेकिन सब अजीब से लोग हैं, सब अजीब से कपड़े, अजीब से अवस्था, अजीब से रूप में, अजीब से कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, और सब लोग नृत्य कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी को उनको देखकर और उत्साह आया, फिर उन्होंने और जोर से बजाना शुरू किया, फिर लोगों ने प्रभुपाद के खिलाफ अभिन इर्द गिर्द गोल गोल घूमकर कीर्तन करना शुरू किया। फिर प्रभुपाद जी ने वहां पर प्रवचन दिया, कैसे हम आत्मा है, शरीर नहीं है, कैसे हम जन्म मृत्यु के सागर में फंसे हुए हैं, कैसे कष्ट भोग रहे हैं, और कैसे पाप करके यहां पर और बार बार आ रहे हैं। हाँ, ये सब अनोखी अद्भुत बातें उन्होंने सुनी सबसे पहले, क्योंकि उनको लगा था कि एंजॉय है, इसमें क्या है, सब कुछ करने के लिए जिंदगी दी है, इसमें क्या कर्म और क्या होता है। ये पहले बार शॉकिंग न्यूज उन्होंने सुना, और फिर एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर वहां से उन्होंने पूछा आप कहां रहते हो, तो कुछ उनके पीछे पीछे आए, तो मैं भाई यहां रहता हूं स्टोर फ्रंट में, हाँ जहां पर कुछ दुकान हुआ करती थी वहां पर रहने लगे थे वो, पीछे उनका कमरा था पीछे वाले बिल्डिंग में दूसरे माले पे, और सामने बैठते थे, और कुछ गीता कोर्सेस के लिए आइए, मैं 3 दिन हफ्ते में गीता सिखाता हूँ शाम को, आ जाइए, तो कुछ लोग आते थे नशे में चूर होकर, दारू की बोतल लेकर, ऐसे ड्रग लेते हुए, ऐसे लड़कियां लड़के पागलों की तरह आते थे। आप सोच सकते हैं अभी आप लोग कितने सुसंस्कृत लोग हैं, भक्त हैं, मैं तो आपको प्रणाम किया आके कि आप ब्रजवासी हो। हाँ, अगर इस सभा में समझो ड्रगिस्ट लोग बैठे हुए हैं, कोई वहां पर आदमी औरत कुछ कर रहे हैं, इधर कोई शराब पी रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा यहां बैठकर समझ में नहीं आएगा मुझे क्या बोलना चाहिए मुझे। ऐसे लोगों को उन्होंने प्रवचन दिया, उसमें से एक बार आए एक ड्रग लेके वो पूरा तर ऐसा आदमी आया, उसके हाथ में टॉयलेट का पेपर का रोल था। लोगों को बोला टॉयलेट का पेपर लेके क्यों इधर आया। लेकिन देखो अज्ञात सुकृति कैसी होती है, हाँ कि है तो बुरा, नशे में चूर, पाप में चूर, लेकिन उसने देखा था कि ये सौर फंट के अंदर जो टॉयलेट है उसके अंदर पेपर रोल नहीं है। तो अगली बार जब आया तो वो रोल लेके आया तो लोग देख रहे कौन पागल आदमी आया, तो सबका रास्ता निकाल निकालते टॉयलेट में गया, तो उनको और आश्चर्य लगा टॉयलेट में टॉयलेट में गया, रोल लगाया और वापस चला गया। वो प्रभुपाद ने कहा His spiritual life has begun। उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया है, भक्ति का जीवन। ऐसे मैं एक आपको अंदाज दे रहा हूं कि किस प्रकार का प्रवचन वहां होता होगा, शायद किस प्रकार का ऑडियंस वहां सुनता होगा। उसमें से कुछ लोग फिर बोले कि ये सब भोजन आप बनाते हो रोज सबको, नो क्या देखो आप लेक्चर के पहले खुद किचन में, पहले मार्केट में जाकर कुछ भिक्षा लेकर आते थे और छोटे से किचन में कुछ ना कुछ बनाते थे और रेडी रखते थे, उसके बाद वस्त्र पहन के जो भी है आकर आसन में बैठकर वहां कर जो भी अपना खुद का बनाया आसन, खुद ही आसन रखते थे, खुद ही सब रखते थे। मैंने अभी कुछ रखा नहीं इसके अंदर, आप रेडीमेड था इधर। प्रभुपाद जी खुद अपना बैठने का खुद सामने का रखते थे और खुद प्रवचन करते थे, और उसके बाद में अचानक प्रवचन से उठ के पीछे जाते थे और सब प्लेट लेके आते थे और सबको प्लेट दे देते और सब लोग प्लेट के उधर प्रसाद खाते थे। अभी देखो अमेरिका में ना एक रिवाज है, अभी वो बहुत बेकार रिवाज है, हमको कुछ फॉलो नहीं करना चाहिए उसको, कुछ खाना कुछ छोड़ देना, कुछ जूस आया तो कुछ पीना बाकी छोड़ देना, ऐसा उधर का एक भयंकर कल्चर है। तो जवान लड़के लड़की लोग हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति है 70 ईयर ओल्ड, वो दे रहे हैं अपने हाथ में, वो नीचे रख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं बाकी छोड़ के वैसे ही प्लेट जूटा जा रहे हैं। उनको छोड़ने के लिए वो दरवाजे तो जाते थे विदा करने के लिए, ये हमारा इंडियन कल्चर है, हम अपने मेहमानों को दरवाजे तक लेके आते हैं और विदा करते हैं, उसके बाद में ये सारी प्लेटें उठा देते हैं। जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, वो उनका महाप्रसाद है, वो सब लेकर डस्टबिन में डालते थे और फिर वो प्लेटें धोते थे, उसके बाद जो बड़े पॉट में जो बनाया उसको धोते थे और किचन स्पिक एंड स्पैन करके वापस अपना अगला दिन का कार्यक्रम शुरू करते थे। तो बहुत दिन ऐसा प्रसाद खाने के बाद कुछ लोगों को पूछा रहा, स्वामी जी ये सब कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। अच्छा, देख सकते हैं कहां बनाते? पीछे जाके दिखाया, किचन में सब पड़ा हुआ है बर्तन वर्तन। तो बोले इसको धोते कौन है? बोले हम धोते हैं। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि वो 20-22 साल के जवान लड़के थे, तो उन्हें कहा कि हम धो सकते हैं क्या? बोले मैं इसी प्रश्न का इंतजार कर रहा था बहुत दिन से कि कौन मुझे पूछेगा ये कौन धोएगा, तो मैं धो सकता हूं क्या? बोले धो लो। तो धोना शुरू किया। फिर किसी भक्त ने पूछा, किसी व्यक्ति ने पूछा कि मैं यहां रह सकता हूं क्या? तो प्रभुपाद ने कहा मैं इसका भी इंतजार कर रहा था, कोई पूछेगा कोई रहूंगा यहां पर पूरी मेरी देखभाल करेगा। ऐसे कर कर करके एक 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 ज्वाइन हो गए, लंबे लंबे बाल वाले। एक दिन किसी ने पूछा कि मैं भी तुम्हारे तरह सर मुंडवा सकता हूं क्या? बढ़िया, कर सकते हो जरूर। मैं भी ये तिलक लगा सकता हूं क्या? ऐसे करते करते ए बी सी डी, मतलब क्या कि जैसे बालक जब जन्म लेता है ना तो पहला कदम कैसा लेता है, वो कितनी बार गिर जाता है, ऐसे ऐसे बालकों को जैसे इस भक्तों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया उधर। कीर्तनानंद दास, अच्युतानंद दास, ऐसे ऐसे पहले पहले शिष्य बने। ऐसे प्रश्न पूछे, क्या दीक्षा ले सकते हैं क्या, जप कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? धीरे 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 प्रभुपाद ने बताया। और एक दिन बताया कि अगर ये सब कुछ मैं आपको पहले दिन बता चुका होता तो आप सब लोग भाग गए होते ही, और मुझे भी आपने पीटा होता अगर मैंने आपको सब कुछ एक साथ में बताया होता कि आपको क्या करना है फाइनली। तो उस स्टोर फ्रंट में एक दिन उनको लगा कि अभी हमारी संस्था को बनाना चाहिए, तो उन्होंने ना वकील को बुलाया, और वकील को बुलाया तो उन्होंने क्या नाम लिखना है, अभी आपके साथ पास एक रेंटल किराए की प्रॉपर्टी है छोटा सा, वो भी आपका है नहीं, मल्टीपर्पज है वो, उधर आप रह रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। तो वकील ने पूछा क्या नाम देना है, तो उन्होंने लिखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बोला इंटरनेशनल क्या होता है इसके अंदर? हाँ इंटरनेशनल क्या है उसके अंदर? और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों लिख रहे हैं आप गॉड कॉन्शियसनेस लिखो क्योंकि कृष्ण ये भगवान है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन गॉड गॉड सबको मालूम है। तो आप ऐसा लिखो कि लोगों को समझ में आए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, कृष्णा इज गॉड, इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस ही होना चाहिए। उधर फिर उन्होंने कहा व्हाट अबाउट इंटरनेशनल? तो इंटरनेशनल तो है नहीं, आप तो अभी शुरू कर रहे हैं इधर खुपचे में। उन्होंने कहा एक दिन ये इंटरनेशनल बनेगा। तभी उसी के आसपास ना एक दिन वो टॉमकिन स्क्वायर पार्क गार्डन में बैठे थे, होते ना बेंच सारे बहुत सारे इधर को, वो क्या सन सिटी अनंतम बेंच बना के रखा है, बहुत सारे बेंच ऐसे बना के रखे। तो उधर एक दो व्यक्ति, एक प्रभुपाद जी हमारे और एक बुड्ढा व्यक्ति अमेरिकन बैठा है, और प्रभुपाद को उसको क्या बता रहे हैं कि हजारों मंदिर बने हुए हैं, लाखों किताबों का वितरण हो चुका है, हजारों भक्त बने हुए हैं, देश विदेश में मंदिर बने हुए हैं, बस वक्त की देरी है, ओनली टाइम सेपरेट्स। एक तो बुड्ढा जो व्यक्ति था वो सोचता होगा कितना पागल बुड्ढा है ये, उम्र देखो उसकी, और क्या कह रहा है कि हजारों मंदिर होंगे, लाखों किताबें होंगी, हजारों भक्त होंगे, देश विदेशों में मंदिर होंगे, मतलब हेल्यूसिनेशन बोलते हैं उसको। हाँ ऐसे सपने देखना जो एक बीमारी होती है जिसमें लोग केवल सपने देखते रहता है कि मैं राजा बना हूं, फिर मैं 56 भोग खा रहा हूं, फिर मुझे बोर हो गया तो मैं लात से उसको धक्का दे रहा हूं, तो उसका शेख चिल्ली कहते हो, शेख चिल्ली हमारे बचपन में हम कहानी सुनते थे, मतलब केवल कल्पना में जीना और फिर वो कल्पना जो है वो जो भंग हो जाती है और फिर हम वास्तव का सामना करते हैं। अरे मैं तो रस्ते पे बैठा हूं भीख मांगने के लिए बैठा हूं और मैं राजा बनने का सोच ख्वाब देख रहा हूं, उस तरह से लग रहा था। लेकिन एक वैष्णव जो है ना उसकी सोच हमेशा बड़ी होती है। प्रभुपाद जी ने कोई भी बात छोटी नहीं सोची, भले उनके जेब में 1 रुपया नहीं था, 1 डॉलर नहीं था, 1 सेंट नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई शिष्य नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, सब किराए कर्ज लेकर वो भागवत बनाकर लेके आए थे। लेकिन उनको पता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे पास सबसे सर्वोत्तम धन है, वो क्या है? मेरे गुरु जी की दी हुई आज्ञा, ये मेरा सबसे बड़ा धन है, इसके आधार पर मैं सबसे बड़े सपने देख सकता हूं, ये उनका विश्वास था। तो उन्होंने फिर वो बनाया, वकील बहुत मन में सोचता रहा कि क्या है ये सब इंटरनेशनल क्या होता है, फिर भी बनाया उन्होंने, और उस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ। हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक तो अंतरराष्ट्रीय सब विश्व में हर राष्ट्र में होगा, और कृष्ण भावना मृत केवल भावना नहीं है, वो भावना का अमृत है, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भावना है, अमृत की तरह है। अमृत क्या होता है? जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। अमृत का अर्थ क्या होता है? जो ग्रहण करने से मृत्यु नहीं होती है, क्षय नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, उसको अमृत कहते हैं। तो ऐसा ये क्षय न होने वाला चिरंतन शाश्वत शास्त्र है, शाश्वत जीवन पद्धति है, शाश्वत आंदोलन है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ऐसा उन्होंने हर एक व्यक्ति को चुन चुन कर बनाया उसको। और मुख्यतः जब हम सोचते हैं कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन सोचते ही मन में क्या आता है? मंदिर है ना। सबसे पहले मैं इस्कॉन में गया था, मतलब कहां गया था? मंदिर गया था। तो पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो अधिष्ठान है वो भगवान का मंदिर है। तो वो मंदिर बनाया उन्होंने। आप लोगों को पता होगा, मोस्टली होगा पता, सबसे पहला मंदिर किसका बनाया? सैन फ्रांसिस्को में, वेस्ट कोस्ट में, पश्चिमी तट समुद्र के, पैसिफिक ओशन। और सबसे पहला मंदिर बनाया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। इतनी बड़ी अद्भुत कहानी है उसकी। वो मालती माता जी, हाँ, श्याम सुंदर प्रभु की पत्नी, वो एक मॉल में गई थी ऐसे, और एक कुछ उनको वो दिखे, डॉल गुड़िया दिखी, थोड़ा अच्छा लगा गुड़िया देख के, तो उन्होंने ना चोरी करके लेके आए उसको, ऐसे इतना सा था तो जेब में डाल दिया उसको। आजकल तो ऐसा मॉल में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आप निकल नहीं सकते हैं। और प्रभुपाद के सामने वो गुड़िया रखी जाके, प्रभुपाद जी बोलेंगे हाँ अच्छी गुड़िया, ऐसा कुछ बोलेंगे ऐसा तो उम्मीद था। प्रभुपाद जी अपने आसन से उठे और दंडवत प्रणाम किया उसको। अरे क्या है ये गुड़िया में? प्रभुपाद जी व्हाट इज दिस? तो प्रभुपाद बोलते ये गुड़िया नहीं है, ये जगन्नाथ है, किंग ऑफ द यूनिवर्स, ये भगवान है। तो उन्होंने कहा आपको और दो गुड़िया नहीं मिली क्या? तो बोला उधर दो बड़े बोरी में था, लेकिन वो एक ही बोरी खोली थी उसने, तो एक बोरी में से मैंने गुड़िया चुराई। बोला जाओ बाकी भी दो गुड़िया लेके आओ। तो अभी क्या करे, अभी देखो चोर कोई चोर चीज करके लेके गया है और उसको उस चीज जैसे और दो चीज चाहिए तो दिखानी पड़ेगी ना उसको। तो बोले अभी तो सत्य बोलना पड़ेगा क्योंकि गुरु जी का आ गया है। तो लेके गए उसको और दिखाया कि ऐसे आपके पास दो और है क्या? मैंने ना इसको चुराया था लेकिन अभी मेरे गुरु जी बोल रहे कि और दो चाहिए। बोला है ना साथ में सेट है उसका, वो आप तो एक ही लेके गए, दो और है। तो दो गोरी बोरियां खोली और एक जगन्नाथ जी के बाद में बलदेव जी और सुभद्रा जी का दो छोटे छोटे गुड़िया निकाली। बोले ये सेट है पूरा। तो वो लेके भागी, वो भी उसको प्रेम दे दिया उसने, पता नहीं उसको मन में क्या प्रेम आया। तो तीनों जाके टेबल पर रखा, प्रभुपाद ने फिर दंडवत प्रणाम किया। बोले ये जगन्नाथ है, ये उनके भाई बलदेव हैं, ये उनकी बहन सुभद्रा देवी है और ये जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो सबको भी देखो, किसी को भी अभी भी नए लोगों को आप जगन्नाथ दिखाएंगे ना तो बड़ा आश्चर्य लगता है, कृष्ण तो मुरली वाले हैं, ये तो उनको हाथ के पंजे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे भगवान है? वो उनका प्रश्न ही प्रचार शुरू होता है उससे, उसके उत्तर में पूरी कहानी कैसे क्यों है। तो ऐसे अद्भुत भगवान वहां अपना प्रकट हो गए। देखो सबसे आखिर मंदिर प्रभुपाद जी गए थे जगन्नाथपुरी में प्रार्थना करने के लिए, कृपा याचना करने के लिए, और वहां से फिर सब यात्रा करके वहां पहुंचे थे। सबसे पहला मंदिर भी जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट हो गए जगन्नाथ जी। तो श्याम सुंदर को बोला ये मूर्ति को देख रहे हो आप, ये तथाकथित गुड़ियों को देख रहे हैं, ऐसे मुझे बड़े बनाकर दे सकते हो आप? हाँ बोले मैंने कुछ कुछ ट्रेनिंग लिया लेकिन कुछ कुछ ट्रेनिंग नहीं भी लिया है, लेकिन आप चाहते तो मैं कोशिश कर सकता हूं। तो उन्होंने उसी प्रपोर्शन में तीन बड़े बड़े विग्रह बनाए, हो सकता है वो 4 फुट के होंगे शायद साइज के, इतने इतने से मूर्तियों को इतना बड़े विग्रह बनाए कई महीनों तक। और प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में वो स्थापना कर दी उसकी, सबसे पहला मंदिर। और नाम क्या रखा उस शहर का? न्यू जगन्नाथपुरी। और वहां पर फिर वो विग्रहों का स्थापना किया उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बाद में फिर कई विग्रह हुए, अमेरिका में 25 से अधिक मंदिर बने अलग अलग सिटी में। तो मंदिर क्यों बनाए? क्योंकि इसका आपको प्रमाण यहां मिलता है कि जहां पर भगवान विराजमान होते हैं, जिनकी भगवान की स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लकड़ी में तो लकड़ी कुछ नहीं होती, लकड़ी में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान उसमें अवतरित हो जाते हैं, फिर हम उसकी पूजा करते हैं, 6 बार भोग लगाते हैं, 6 बार आरती करते हैं, बहुत सारे उत्सव मनाते हैं उनके लिए। तो सब कुछ उन्होंने सिखाया। इसका कारण ये था कि लोगों को अपने अपने घरों में बहुत सारी समस्याएं होती है, अंतर पारिवारिक और समाज में, देश में, घर में, हर प्रकार की समस्या होती है और लोग परेशान रहते हैं। तो मंदिर होना चाहिए क्योंकि मंदिर में आकर लोग देखेंगे कि भगवान की सेवा हो रही है और भगवान की सेवा करने से सब दुख दर्द मिट जाते हैं, होते भी हैं तो उसका परिणाम नहीं होता है और है कुछ तो नष्ट भी हो जाते हैं, दोनों चीज होती है। अगर कुछ बचते भी है तो उसका परिणाम भक्त के चेहरे पर कभी दिखता नहीं है, चल रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक, चल रहे हैं सामने का म्यूजिक भी चल रहे हैं। तो तमाम कृष्ण महाराज हिजोली ने इन्होंने एक बार कहा था कि मंदिर प्रभुपाद जी ने क्यों बनाए? उन्होंने कहा मंदिर इसलिए बनाए गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये जो तत्व रूप गोस्वामी ने दिया है ना, ददाति प्रतिगुणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगदे भोजयते चैव षड्विक्तिर षड्विधिर प्रीति लक्षणम। तो पहला जो है वो ददाति प्रतिगुणाति, प्रेम बढ़ने के लिए आप भेंट देते हैं किसी को, आप लेते हैं और देते भी हैं, फिर भोजन करते हैं साथ में, खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। लेकिन इस ये जो 4 चीजें हैं वो करने से फिर आत्मीयता निर्माण होती है, एक प्रेम भाव मैत्री भाव निर्माण होता है और उसके बाद में फिर अपने दिल की बात वो किसी को बोलने लायक स्थिति हो जाती है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, उसके मुंह से उसके दिल की बात सुनना और अपने दिल की बात उसको बताना, और गुह्यम क्यों लिखा है, ये पब्लिक टॉपिक नहीं है, ये बहुत प्राइवेट टॉपिक है, और उम्मीद भी इसके अंदर ऐसी है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे हृदय की बात, जो गुप्त बात है, वो किसी को फेसबुक में डालेगा नहीं, व्हाट्सएप में डालेगा नहीं उसको, हाँ दुनिया भर में पता चलेगा कि इसका क्या चल रहा है, ऐसा नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल गुह्य बताया गया उसको, वो उसकी व्याख्या ही गुह्य है। तो गुह्यम आख्याति, और सुनना उसका आख्यायन सुनना और उससे उसको भी सुनाना हृदय की बात, तो मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है और दुख से पीड़ित लोगों का दुख निवारण हो जाता है और आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि कोई सुरुद्ध जो हृदय की बात करने योग्य व्यक्ति है उसकी मुलाकात होती है तो जीवन का जितना बड़ा बोझ जो हल्का हो जाता है। उन्होंने कहा तमाल कृष्ण महाराज ने कि ये करने के लिए मंदिर बनाया है। शुरुआत में हम लोग भोजन करते हैं मंदिर जाकर, फिर थोड़ी मित्रता होती है तो गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन जब तक हम मंदिर में आकर ऐसे किन लोगों को नहीं मिलते हैं जिनसे हमारा दिल खोल के बात कर सकते हैं, तब तक मंदिर का रियल पर्पज पूरा नहीं होता है। बाकी उत्सव चल रहे हैं, जो नौका विहार चल रहा है, रथ यात्रा चल रही है, जन्माष्टमी आप सब बना रहे हो, फूल सजा रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, बहुत बढ़िया है, वो होना ही चाहिए, उसके लिए तो मंदिर होता है, भगवान को केंद्र स्थान में रखकर सारे उत्सव मनाने के लिए और हमारे इंद्रियों को उसमें लगाने के लिए और इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि और अहंकार को शुद्ध करने के लिए ये सब उत्सव मनाते हैं हम लोग। तो ये मंदिर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को देखना यह है कि हमारे पास हजारों डिवोटीज हैं लेकिन हमारे लिए कोई एक ऐसा होना चाहिए इसके अंदर जिससे हम दिल की बात कर सकते हैं और वो निर्माण करना हमारा उत्तरदायित्व है। आप इसको उनको ब्लेम नहीं कर सकते क्या मैं कृष्ण बलराम मंदिर में आया एक भक्त नहीं मिला जो मैं दिल की बात कर सकूं। ये कहना गलत है। हमको जाकर ददाती प्रतिगुणाति और भुंगते भोजयते करके ढूंढना है कि वो कौन व्यक्ति है जिससे मैं दिल की बात कर सकता हूं और एक नहीं अनेक होना चाहिए। एक हो तो कोई दिल्ली गया होगा तो आपको अभी बात करने तो कैसे बात करेंगे, तो स्पेयर में भी कुछ होने चाहिए। और जिनके पास बहुत लोग हैं वो सच्चे अमीर लोग हैं, जिसके पास बहुत लोग हैं जो हर समय पर उनको सहारा देने के लिए तत्पर रहते हैं। और ऐसा समुदाय बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया है। हम सब लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, सब लोग चार नियम पालन करते हैं, सब लोग शास्त्र पढ़ते हैं, दीक्षा लिए हुए सेवा करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन हमको सब लोगों को ऐसा एक समुदाय चाहिए, समाज चाहिए जो हर समय हर घटना में हर दुख में हर सुख में आपके साथ रह सकता है। ऐसा बहुत अच्छी तरह से बंधा हुआ समाज हमको जरूरत है, तब जाकर व्यक्ति का विकास होता है और आध्यात्मिक विकास भी उसी वजह से होता है। एक जो लौकिक विकास है जो हमको चाहिए मन को शांत रखने के लिए वो भी प्राप्त होता है और भगवान की तरफ प्रगति करने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए भी ऐसा प्रेमी समाज बहुत आवश्यक है। जब हमारे आचार्यों को भजन हम सुनते हैं ना तो क्या कहते हैं, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, है ना, वो क्या कह रहे हैं वो कि रामचंद्र कविराज मेरा बहुत अच्छा मित्र है और उसका संग मैं हमेशा चाहता हूं। अभी आप कहेंगे नरोत्तम दास ठाकुर इतने परम वैष्णव आचार्य सिद्ध आचार्य हैं वो, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मुझे भी रामचंद्र कविदास की आवश्यकता है। तो सीखना क्या है उसमें से कि मंदिर का निर्माण इन सूक्ष्म और स्थूल दोनों चीजों के लिए किया गया है। इसलिए मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान नाम, भगवान का प्रवचन, भगवत सेवा, प्रसाद वितरण, प्रसाद सेवन, ये सब कुछ करते करते हमको ये भी देखना है कि हम सब लोगों को एक प्रेमी समाज निर्माण करना है। और यहां पर जो वर्णन किया है, समय बहुत कम है, यहां पर जो वर्णन किया है कि ऐसा मंदिर जिसको प्रभुपाद जी ने कहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हमारा मंदिर केवल ऐसा नहीं है एकदम गंदा इधर उधर सब जगह, वो क्या कहते हैं ना, वो कोलिस्टक मतलब क्या, कॉबवेब्स, जाले पड़े हुए हैं, हाँ कोई रंग उड़ा हुआ है, भगवान का भी कोई पुराना वस्त्र पहना हुआ है, धूल पड़ी हुई है, भगवान भी एक हाथ से घुमा रहे हैं, ऐसा हमारा मंदिर नहीं है। ऐसा वाइब्रेंट है हमारा मंदिर, कभी भी जाएंगे ना ऐसा दिल खिल उठता है। आप कितने भी खुद उदास रहेंगे ना, भगवान को देखकर आप ऐसा खिल उठेंगे क्योंकि वो उसकी इतनी प्रेम से सेवा की गई है, भगवान की इतने प्रेम से उनको खिलाया हुआ है, इतने प्रेम से श्रृंगार किया हुआ है, उससे एक दिव्य चेतना का ऊर्जा स्थान है वो। प्रभुपाद कहते थे मेरे मंदिर मंदिर नहीं है, मेरे मंदिर वैकुंठ है और मेरे मंदिर गोलोक का झरोका है। आप मेरे मंदिरों में आओगे तो गोलोक के गोलोक को देख सकते हैं आप, क्योंकि ये झरोगा है, इट्स अ विंडो टू अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये सब हमको अनुभव करना चाहिए। और इतना बढ़िया डीडी वर्शिप, इतना बढ़िया स्टैंडर्ड, इतने पक्के भक्त जो चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं। भारत में चाय कॉफी नहीं पीते आप? अरे हमारा बच्चा भी नहीं चाय कॉफी पीता है। अच्छा, हमारा बच्चा एक साल से बाद शुरू करता है चाय पीना। इतने पक्के नियम के, हमारे आंदोलन का जो नया नया भक्त है ना, वो भी बाहर के लोगों का सामने एक श्रेष्ठ भक्त होता है। एक साल की सरस्वती क्या कहती थी सबको पंडाल में, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। उसको वहां खड़ा किया था एक साल की लड़की को, सबको बोलना है आपको कृष्ण भगवान है। वो बेचारी क्रॉफर्ड क्या कहते हैं क्रॉस मैदान, बंबई में विशाल मैदान है, वहां पर जहां प्रवेश कर रहे हैं वहां पर खड़ी थी वो, सबको बोलती थी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। एक बालिका के मुख से ऐसा सुनना, इतना विश्वास के साथ, कितने लोगों का हृदय पिघल गया उसके अंदर। तो मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा स्थान जो है, वो स्थान उस भावना को निर्माण नहीं करता है। उस स्थान में जो आप और हम आते हैं ना, उस भावना को निर्माण करने वाले आप और हम लोग हैं। अगर हम लोग गलत व्यवहार किए, झगड़ा किया, मारामारी किया, ऐसा एक दूसरे को वैल्यू नहीं किया, तो हम लोग ही उस दिव्य वैकुंठमय स्थान को तुच्छ स्थान बना रहे हैं। अरे मैं दोबारा कभी जाऊंगा नहीं वहां पर, ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं शायद भौतिक दुनिया में तड़प रहा था, इसलिए कुछ सुख ढूंढने के लिए वहां गया था, वहां देखा कि हमारे से भी ज्यादा तकलीफ वहां पर है। ज्यादा झगड़े तंटे वहां पर है, जो हम घर में करते हैं वो उधर भी भक्त लोग कर रहे हैं, तो क्यों आएंगे लोग? उनको अपने दुनियादारी के जो तकलीफ है, पीड़ा, यातनाएं हैं, उनसे मुक्ति चाहिए, इसलिए वो आपकी ओर देख रहे हैं। क्या आपके पास कुछ है ऐसा फॉर्मूला जो आप दे रहे हैं यहां पर? और वो अगर लोगों को अनुभव होगा, तो प्रभुपाद जी का मंदिर बनाने का उद्देश्य जो है, जो उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई, उसका उद्देश्य पूर्ण होगा। तो अभी यहां पर रिलेवेंस क्या है कि ऐसा स्थान ऐसे विधियों को करने के लिए बहुत उत्कृष्ट होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे अपने मंदिरों में विवाह संस्कार किए। कितने सारे विवाह संस्कार प्रभुपाद जी के, इंटरनेशनल विवाह संस्कार, ऑस्ट्रेलियन हस्बैंड, अमेरिकन पत्नी, ट्रू यूनाइटेड नेशंस, ट्रू यूनाइटेड नेशंस। प्रभुपाद ने बहुत अद्भुत चीजें की, क्रांतिकारी चीजें की। एक मंदिर नाम के संस्था के आधार पर उन्होंने सब कुछ किया है, लोगों को अनुभव दिया, लोगों को पूछा, लोगों ने पूछा उनको, अरे आप इतने इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हो, दुनिया में क्या मंदिर कम है क्या? कितने सारे मंदिर है, किसी मंदिर में जाकर बैठो आप और करो। अभी कितना गुगली क्वेश्चन है। तो प्रभुपाद इतने हजर जवाबी थे, उन्होंने बोला आपके आपके बच्चे हैं? नहीं नहीं, अभी शादी हमारी अभी भी हुई है। तो आप बच्चे को जन्म नहीं देंगे? हाँ देंगे ना जन्म। बोला क्यों? इतने अनाथ आश्रम है दुनिया में, इतने बच्चे पड़े हुए हैं, ले लो किसी को अपना बच्चा बना लो माँ बाप। नहीं नहीं, हमको हमारा बच्चा चाहिए। वैसे ही दुनिया में बहुत सारे मंदिर है, मुझे अपना मंदिर चाहिए। क्योंकि अपने मंदिर में मैं अपने तरीके से सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरों को मंदिर में जाके बोल सकता ना, ये जाले निकाल दो, ये सब पेंटिंग करो, यहाँ पर अच्छी तरह 6 बार भोग लगा दो। बोले बाबा कहां से आ गए तुम, इतना भी नहीं होता है हमारे पास। तो मेरे मंदिर में मेरे ढंग से करूंगा, जो मेरे गुरु जी ने बताया है उस तरह से करूंगा, और उस तरह से लोगों को भक्त बनाऊंगा। आज भी 50 से ऊपर साल हो गए अभी, है ना, 55 साल हो गए। इस्कॉन जैसे मंदिरों का जो वातावरण है, वाइब्रेंट एटमोस्फियर, हाँ क्या कहते हैं वाइब्रेंट को हिंदी में, बहुत गतिविधि, आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा के साथ, कहीं नहीं मिलेगा आपको। वृंदावन में पुरातन मंदिर है, वो गोस्वामी की कृपा से हो रहा है, लेकिन विश्वभर में जहां पर कोई मंदिर नहीं है, वहां पर भी आप जाओगे तो आपको चमकता हुआ मंदिर देखेगा, स्वच्छ एकदम। प्रभुपाद की एक इच्छा थी और, कि भारत वर्ष था वो कीचड़ गंदगी के लिए बहुत मशहूर था, खास करके मंदिर में। तो उनकी इच्छा थी मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगा, ऐसे मंदिर बनाऊंगा जहां पर ऐसा स्वच्छ होगा इतना कि लोग उसको देखकर प्रभावित हो जाएंगे। और देखिए आज भी हमारे वर्ल्ड में प्रभुपाद जाके कितने साल हो गए अभी, फिर भी जो भी नए मंदिर बनते हैं, जो भी पुराने मंदिर है, से चमकते रहते हैं। बीच दोपहर में, रात को सब लोग पाइप लगाकर धोते रहते हैं उसको, जब देखो तब चमचमाता हुआ जमीन रहता है। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज बताते हैं, राधानाथ स्वामी महाराज, मतलब वो एक तात्विक वाक्य है, कि मंदिर की जमीन इतनी स्वच्छ होनी चाहिए कि अगर पत्तल नहीं होंगे तो जमीन पर भी परोसा सकता है प्रसाद। उडुपी में मंदिर है मध्वाचार्य का, कृष्ण भगवान का, वहां पर एक ऐसा हॉल बनाया हुआ है मार्बल का जिसमें हर रोज वो टाइल पर भोजन खिलाते हैं लोगों और हजारों लोग रोज खाते हैं प्रसाद वहां पर। मैंने भी खाया हुआ है। वो भी कैसा, हमारे गांव में कैसा होता है, लिक्विड होता है सब ना, सांबार रसम खीर सब बहते हुआ ही काम है सब। वो सारा चीज उसपे टाइल पे खिलाते हैं, फिर धोते भी है, फिर दूसरी पंगत बैठती है। ये भी ऐसा नहीं कि वो खाली कल्पना में बात है, वास्तव में भी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, स्वच्छता ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे ही प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड रखा है। इसलिए इस्कॉन संस्था दिन दुगुना और रात चौगुने बढ़ रही है क्योंकि लोगों को उसमें एक एक्सपीरियंस मिलता है। जो स्टैंडर्ड प्रभुपाद ने गाइडलाइन दिया हुआ है उससे लोगों को एक दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। केवल प्रसाद खाने के लिए बहुत लोग आते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनको अनुभूति प्राप्त भी होते हैं। ऐसे विग्रह देखने को मिलते हैं, ऐसे भक्त देखने को मिलते हैं, चमकदार भक्त है ना, क्लीन शेवन, तिलक लगाया हुआ एकदम बढ़िया सा चमकदार तिलक, हंसता हुआ चेहरा, तेज है उस चेहरे के अंदर। ऐसे लोगों को मिलना भी भाग्य होता है। तो सब लोग ऐसे होते हैं, मुरझाए होते हैं, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, फ्लाइट में जाओ, कहीं तो बैठो किधर जाके, सब लोग ऐसे लटके हुए चेहरे। हाँ आप देख रहे हैं इधर सब जगह नेगेटिविटी आ रही है आपके अंदर, फिर मंदिर में आ जाओ चमकदार चेहरे सब जगह पर है ना। इसलिए ये स्थान ऐसे विधियों के लिए बहुत आवश्यक है। और लेटेस्ट अभी जो ऐसा है ना, अभी आजकल लोगों को ना संस्कार नहीं मिल रहे हैं। आजकल के युवा माता पिताओं का क्या समस्या है, दोनों काम कर रहे हैं, इतनी जरूरतें हैं, चार चार मोबाइल चाहिए, दो दो गाड़ी चाहिए, क्या क्या चाहिए सबको, दो दो टीवी, चार चार टीवी घर पे चाहिए हर कमरे में, मल्टी कंज्यूमरिज्म बोलते हैं उसको। सो इतने खर्चे बड़े हुए हैं तो दोनों माँ बापों माता पिता को काम करना पड़ता है और बच्चों का क्या करें, संस्कार नहीं मिल रहे उनको। दिन रात पैसे कमा रहे हैं, चीजें लाके दे रहे हैं, बढ़िया सी व्यवस्था दे गए लेकिन संस्कार कैसे मिलेगा, रुपयों से नहीं मिलता है वो। तो लोग अभी संस्कार के कार्य शुरू कर दिए लोगों ने, भक्त लोग भी बहुत होशियार है, उन्होंने भी संस्कार के रूप पर बहुत सारा प्रचार शुरू किया है। सीमांतोन्नयन संस्कार, गर्भवती संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, वास्तु पूजा, ये सब शुरू किया है भक्त लोगों ने। कारण क्या है, इसके माध्यम से फिर लोग गंभीरता से जुड़ जाते हैं, अरे कितना बढ़िया विधि किया प्रभु जी ने। तो फिर बताएंगे आप, जब जब भी करना चाहिए आपको, ये भी करना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, ये मौका मिलता है। और आप बोलेंगे ना उनको 16 माला करो, 4 माला करो, तो फिर वो बोल रहे हैं हमको नहीं इतना सब जमेगा। आप बोलेंगे गृह प्रवेश में हमको ये सामान चाहिए, ये विधि करना है, ये 15 विधि हम करेंगे, 4 घंटा लगेंगे, जो हम गंभीरता से आपको सब कोऑपरेट करेंगे, सर गुरु जी आपको क्या चाहिए, और तो आपके लिए एक मौका है, तो उस माध्यम से प्रचार करते हैं। और ये संस्कारों को संपन्न करने के लिए भी मंदिर एक उत्कृष्ट स्थान है। भगवान के सानिध्य में, अच्छे भक्तों के सानिध्य में आपके बच्चों पर संस्कार किए जा रहे हैं, उपनयन संस्कार किए जा रहे हैं, माता के ऊपर गर्भवती संस्कार किए जा रहे हैं, उसका महत्व तो बताया जा रहा है, जीवन में क्या स्थान है उस संस्कार का, कैसे संतान होगी उसकी वजह से। तो ये सब तरीके हैं जिसके माध्यम से हम सब लोगों को भक्ति की ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो सारांश में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मंदिर इस स्थान को गंभीरता से ले। आपका यहां आना यानी रोज वैकुंठ में आना है आपके लिए, एक आप टेस्ट ले रहे हैं वैकुंठ का, जहां आपको जाना है, एक प्रकार के नेट प्रैक्टिस भी आपके लिए। वैकुंठ में क्या होता है, दिन रात सब लोग भगवान की सेवा में रहते हैं, जो भी चीजें भगवान के लिए होती है वहां पर अपने लिए कुछ नहीं होता है, और भगवान की कृपा से सब कुछ हमारे लिए जो जरूरी है वो सब वहां प्राप्त होता है, क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए अर्पण की जाती है। तो इस स्थान में आना और जाना आपके लिए बहुत गंभीर घटना होनी चाहिए, गंभीर क्रिया होनी चाहिए, सीरियस मैटर। भगवान को देखना कोई साधारण चीज नहीं है। उसने शुद्ध भक्त ने भगवान को जिसमें आह्वान किया है, जिसमें भगवान विराजते हैं, रहते हैं, हम और आप तो चलते रहते हैं, भगवान तो वहीं खड़े हैं, दिन रात वहीं खड़े हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं। कितने लोग आए गए, जन्म लिया, मृत्यु हो गया किसी का, 2-3 पीढ़ियां खत्म हो गई, भगवान वहीं खड़े हैं। हम भी आएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन कृष्ण बलराम जी वहीं खड़े रहेंगे आने वाले अनंत पीढ़ियों को दर्शन देने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था, मैं सुबह प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनता हूं जब मैं तैयार होता हूं। प्रभुपाद ने इतनी सुंदर बात कही थी, उन्होंने कहा कि भगवान अधोक्षज है, किसी भी आपकी इंद्रियों के द्वारा भगवान को आप पकड़ नहीं सकते। कान है, नाक है, जिह्वा है, भगवान के विग्रह को पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो जो न पकड़ में आने वाले भगवान है वो स्वयं दया के कारण ये तय करते हैं कि मैं विग्रह रूप में आऊंगा, सीमित आकार में आऊंगा, ताकि जो मुझे पकड़ने के लिए या मिलने के लिए योग्य नहीं है वो भी मुझसे संपर्क करके मेरी सेवा कर सकते हैं। कृष्णा कैनॉट बी कैप्चर्ड बाय द पावर ऑफ इंद्रियस सेंसेस, बट द सुप्रीम लॉर्ड हैज डिसाइडेड टू कम इन अ लिमिटेड फॉर्म टू अलाउ पीपल टू कनेक्ट विथ हिम एंड सर्व हिम। तो भगवान की कृपा है, विग्रह जो है ना भगवान की कृपा है, जो विग्रह जो भगवान चराचर में समाये हुए हैं हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं, कण कण में भगवान है, कण के बीच में भगवान है, नहीं समझ सकते हम, लेकिन देखेंगे ना, हाँ कृष्ण बलराम ऐसे खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि हाँ भाई कृष्ण बलराम है। तो किसी भी सामान्य व्यक्ति को कनेक्ट करना जो है ना वो आसान हो जाता है, और वे भगवान शुद्ध भक्त की इच्छा से, उसकी प्रेरणा से, उसके संकल्प से वो मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं, और फिर हम सबको अनुभव भी देते हैं। कभी हमको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लगेगा आज रूठे हुए हमसे, कभी लगेगा कि प्रेम से देख रहे हैं, कभी श्रृंगार से प्रसन्न है, कभी प्रसन्न नहीं है, ये सब भाव उनको आते हैं जो आप रोज भगवान को देखते हैं, रोज उनकी सेवा करते हैं। आप डीटी वर्षिप लोगों को मिलो, आपको बताएंगे वो कि रोज कैसे श्याम सुंदर जी अलग अलग लीला करते हैं। तो ये सब अनुभव करने के लिए हम लोग यहां पर आते हैं और आना चाहिए। और यहां की बात तो अलग ही है, यहां का मंदिर कल मंदिर नहीं, यहां का मंदिर वृंदावन धाम में है, रमण रीति में, जहां पर कृष्ण बलराम रमण करते हैं, लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, उसमें प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया है। तो क्या कहें आपको, कितना गुना लाभ है उसके अंदर, विचार नहीं कर सकते हम लोग। पर क्या होता है कभी कभी रोज रोज आने से, कई साल यहीं रहने से लगता है क्या है इधर, क्या है, कुछ है ही नहीं। बाहर के लोग किसी चैन से रहते हैं, हम लोग यहां पर तपस्या करते करते पक गए हैं पूरे। क्यों? क्योंकि जब महान वस्तु हमको रोज प्राप्त होती है तो वो भी हमको बोर होने लगती है, तो चेंज चाहिए हमको। इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है, बार बार सुनना क्यों जरूरी है, कि वही चीज जो आपको प्राप्त है उसका महत्व आपको बार बार सुनने से आपकी जो निष्ठा है वो बढ़ जाती है, प्रस्थापित हो जाती है, हिलती नहीं है वो, अहय तो की अप्रतिहता, तो वह निष्ठा की प्रतिष्ठापना भी होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने यह भागवत का कार्यक्रम बना के रखा है, रोज सुबह नित्यम भागवत सेवया, ताकि दिन भर हम लोग भटक सकते हैं, फिर सुबह आकर सुनेंगे कृष्ण की वाणी तो हम लोग वापस लाइन पे आ जाएंगे, और रोज सुनेंगे तो रोज लाइन पे रहेंगे, भटकेंगे नहीं किधर। मंदिर बहुत पावरफुल स्थान है, हम सब लोग, मैं आपको बता सकता हूं कि आप सब लोग भी मंदिर में आकर भक्त बने हुए हैं। मैं भी एक साल तक, मुझे मेरा फ्रेंड दयाराम प्रभु, हमारी भाषा में क्या, पका रहे थे हर तरीके से, हम उनको धुतकार रहे थे। फिर उन्होंने अभी हार गए बेचारे, वो भी इंटेलिजेंट, हम भी इंटेलिजेंट, वो भी आईआईटी स्टूडेंट, मैं मेडिकल स्टूडेंट, अभी दोनों के टक्कर चल रही है, मुझको इंटरेस्ट नहीं है, उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हमको देने में। हमने एक तो बोला एक दिन, बस हो गया, अभी अभी हमको नहीं सुनना है आपका कुछ, बहुत सब कुछ समझ लिया है आपका फिलोसॉफी, एक साल से सुन रहा हूं मुझे सब कुछ पता है आपको, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, क्या करना मुझसे उम्मीद करते हो, सब मुझे पता है, अभी आप कृपया मत आओ, प्लीज डोंट कम। तो वो इतने होशियार थे दयाराम प्रभु हमारे। उन्होंने कहा प्रभु जी, मतलब उस सब प्रभु जी नहीं बोलते थे, अरे यार दोस्त है ना तो मेरा, तो दोस्ती के लिए एक बार मंदिर आ जा। तो मैंने कहा अरे दोस्ती का वास्ता दे रहा है, दोस्ती का वास्ता, बचपन में मतलब जमाने में कैसा होता है ना, वो इमोशन बहुत हाई होते हैं, किसने अगर कोई डायलॉग मारा कोई इमोशनल तो एकदम पूरा दिल पिघल जाता है। बोला ठीक है दोस्ती का वास्ता दिया तो मंदिर आते हैं। तो 4 फरवरी 1984 के दिन शनिवार का दिन था, बोले चलो आज मंदिर में जाके, और मंदिर में जाके रहना कभी होता है क्या बताओ, मंदिर में जाके आते हैं दर्शन करके, मंदिर में रहना है आपको, अरे रहने की व्यवस्था भी है, अच्छा सुबह उठना है, फिर मंदिर में गए और कुछ प्रसाद खिलाया तो दस्त हो गए, तो गाली दिया, आई एम डॉक्टर, आप मुझे ऐसा ठंडा खाना खिलाते हो, क्या तुम्हारे मंदिर में कुछ हाइजीन नहीं, कुछ नहीं, रात को गाली दिया। फिर संध्या आरती में गया तो उधर डांस कर रहा है ऐसे ऐसे करके, तो हम लोग डिस्को डांस करते थे, बहुत बढ़िया सा एकदम सिस्टमेटिक। ले क्या नाचते हो आप लोग, आपको नाचने आता तो बैठ जाओ, आप लोग बैठ के आरती अटेंड करो। दो घटनाएं होगी, रात को सुलाया, सुबह 3 बजे उठाया, ठीक है उठ जाएंगे। एक रूम पे लेके गए, बाथरूम में बड़ा बड़ा टंकी रखा था पानी का, सब बाल्टी डाल के उसमें नहा रहे थे, मेरे पे डाल दिया बाल्टी, ठीक है बोला। स्नान करके भी मुझे तिलक लगा दिया और 4:25 को मंदिर लेके गए, इस्कॉन झू मंदिर में, अंधेरा था पूरा, श्रीधर महाराज हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अमीय विलास महाराज हरे कृष्ण, क्या गंभीर वातावरण था। उतने में अभी बहुत लंबा प्रसंग है आपको, पर्दे खुले, तीनों पर्दे एक साथ खुले, तीनों शंख एक साथ बजे, तीनों दीपक एक साथ घूमे, आखिरी शंख भी तीनों एक साथ बजे। बोलो क्या बढ़िया ऑर्केस्ट्रा है ना, सुंदर, इतना सिस्टमैटिक, 25 मिनट तक जैसा लगता है कोई रोबोट्स काम कर रहे हैं। क्या बताएं प्रभु जी आपको, मंगल आरती देखा, सारा आर्ग्यूमेंट समाप्त हो गया, नो क्वेश्चन फर्दर, नो आर्ग्यूमेंट, नो झगड़ा, खाली पूछा मंगल आरती के बाद में क्या करना है बताना बस, खाली वो भी दंग रह गया, अरे एक साल तक तड़पाया मुझे, अभी पूछ रहा है क्या करना है, माला दिया क्या करना है, 4 माला करो, ओके और क्या करना है, 2 शॉप में से एक कंठी माला लिया गले में बांध दिया, क्या करना है, नॉन वेज छोड़ देना है, छोड़ दिया, और क्या करना है, एक किताब लिया साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ले इसका क्या करना है, इसको रोज पढ़ना है, ठीक है पढ़ूंगा, जो बोलो जो करूंगा। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मंदिर का जो अनुभव था वो प्राप्त हुआ, जो वो तत्व ज्ञान का डिस्कशन करने से भी नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मंदिर वाले दिव्य वातावरण में गए ना, तो जैसे एक लोहे का टुकड़ा जब लोह चुंबक के पास आता है ना, तो वो भी चार्ज होता है, वैसा आत्मा भी चार्ज हो जाती है जब भगवान के लोह चुंबक के सामने जाते ना, वो जो ऐसा चुंबक है कि वो सबको आकर्षित कर लेता है, उसी से परिवर्तन हुआ। इसलिए मंदिर संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिर क्यों बनाना चाहिए, इसलिए बनाना चाहिए, और मंदिर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, केवल ऐसे घंटी बजाने के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें से लोगों को जीवन परिवर्तित होने चाहिए। और हमारी इस्कॉन के हर एक मंदिर की संस्था जो है वो हजारों लोगों का हृदय परिवर्तन करती है, लोगों का जीवन को श्रेष्ठ बना देती है। इसलिए आइए, प्रभुपाद के द्वारा स्थापन किया हुआ, आज के दिन के स्थापन किया हुआ ये जो संस्था है, इसका मंदिर मूल अधिष्ठान है, उसको हम गंभीरता से लें, और अपना जीवन तो परिवर्तित हो ही गया है, अन्य लोगों को परिवर्तित किए, आपुल्या सारे के करावे सकल जन, जैसे हम बने हुए वैसे लोगों को बनाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो 10 मिनट ज्यादा लिया मैंने, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि बोल, जय।